ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। लगभग 60.42% मतदान हुआ है। सबसे अधिक 66.25% मतदान उत्तर पूर्वी जिले में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में हुआ। जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हुई, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी मनीष सिसोदिया और भाजपा के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश विधूड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव में प्रमुख चेहरे हैं। विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच तमिलनाडु की इरोड ईस्ट और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल मतदान हुआ। इरोड ईस्ट में करीब 67.97% और मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान हुआ है। इन दोनों सीटों और दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए मतगणना शनिवार को होगी। प्रयागराज में महाकुंभ में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन के साथ मुलाकात में संपूर्ण एआई स्टैक, जीपीयू मॉडल और ऐप बनाने की कार्यनीति पर चर्चा की। श्री वैष्णव ने बताया कि श्री ऑल्टमैन ने प्रौद्योगिकी को जनवादी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की है। श्री ऑल्टमैन ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बताया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने बहुपक्षीय सुधारों की आवश्यकता सहित संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा क्षेत्रीय, वैश्विक और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्राइटिस भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। उनके दौरे से भारत और ग्रीस के बीच संबंध मजबूत होंगे और नीतिगत साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज से भारत रंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जो रविवार तक चलेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव के रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा ये महोत्सव पहली बार आयोजित किया जा रहा है। भारत रंग महोत्सव को भारंगम भी कहा जाता है। ये इस वर्ष 28 जनवरी से शुरू है, जो भारत, श्रीलंका और नेपाल के 13 शहरों में 16 फरवरी तक चलेगा। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय पर आधारित इस महोत्सव में रूस, इटली और स्पेन सहित 9 देशों की 200 से अधिक प्रस्तुतियां होंगी। कोलंबो महोत्सव की सूची में हिंदी में ताजमहल का टेंडर और बाबूजी के साथ साथ सिंगल नाटक रोमियो और जूलियट तथा सिंधु किरिली 2 शामिल हैं। एनएसडी की भी 22 सदस्यीय टीम कोलंबो में महोत्सव के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम का 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड से सामना होगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने हाल ही में मेहमान टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 4-1 से शानदार जीत हासिल की। विश्व टेबल टेनिस सिंगापुर स्मैश के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष डबल्स जोड़ी मानु ठक्कर और मानु शाह का सामना चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी फ्लोरियन बोरासेड और एस्टेबन डोर से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।